जो आइडियल हो वो न पेश कर पाओ तो अच्छा करो, लेकिन ऐसा भी मत करो कि लोग ये कहेंगे बड़े आप दुष्ट होते हैं। तो आपकी बदनामी नहीं, 80% तो लोग ये समझते हैं पूजा सब दीक्षा ही तक की है, इसके आगे नहीं। हमने 80% बात, बाकी दुनिया के उससे तो 1% रह जाता है, उसको वो ही कह सकता है कि हाँ सब हम वाकई, तो उसे कोई धोखा नहीं। वक्त आखिर में गुरुदेव भी यही करते थे। देखिए चार चीजें होती हैं, एक तो ये है कि ईश्वर के नाम का अगर आपको जानकारी है, आप किसी को नहीं बताते हैं, तो आप सबसे बड़े गुनहगार। जिस शख्स को नहीं मालूम वो ये कह सकता है सर प्रभु हमें तो आप दुनिया में किसी शख्स ने आपका नाम नहीं बताया, वो तो गुनहगार नहीं हुआ। गुनहगार वो शख्स हुआ जो कि जानते हुए नहीं बताया। अब उसमें ये अपेक्षा कि वो आपका मत माने, नाम ले न ले, इसमें आपको कोई जिम्मेदारी, आपने अपनी ड्यूटी जो थी पूरी कर दी। अगर कोई शख्स इस रास्ते पर चलता है और उसकी इच्छा होती है कि शायद दीक्षा मिलने पर वो चलता रहे, इसी आश्रय पर वो लोग दीक्षा देती है, चाहे वो डिजर्विंग हो या ना हो। तो ऐसा भी नहीं है कि हर दीक्षित आदमी डिजर्विंग है, ऐसे भी हैं जो नॉन दीक्षित है वो मचमोर डिजर्विंग है, तो एक जो कि दीक्षित है वो 20-20 साल से आ रहे हैं। तो जब वक्त आखिर आया तो जो भी आया उसने कहा जाओ प्रसाद ले आओ दीक्षा दे, क्योंकि उनके मुंह लगे से बराबर लड़ते रहे ताऊ जी कुछ नहीं है। तो आपने किस्सा सुनाया, उनके देखो बेटे जब भी कुजरा बाजार में सब्जी बेचने लाता है तो फिक्स रेट रखता है कि गोभी इस हिसाब से देंगे, आलू इस हिसाब देंगे, और किसी का एक पैसा सस्ता कर दो वो नहीं करता है, चाहे ग्राहक वापस चले। उनके जब वक्त वापसी होता है और शाम को वो घर जाने लगता है तो उसके पास दो अल्टरनेटिव है, एक तो ये जो बोझा लाया था उसे वापस ले और दूसरा कुछ सस्ते में लुटा दे। सस्ते में दे देगा बिक भी जाएगी, उससे किसी परिवार खापी के भला हो जाएगा। और मान लो ये भी नहीं होता तो कम से कम खुद तो बोझा वापस नहीं ले जाना पड़ेगा। सच्चाई है उस वक्त इस चीज की बिल्कुल वो नहीं मानते। बाबूजी महाराज साहब ने 81 तक मुश्किल से 20-22 आदमियों को दीक्षा दी और उसके बाद सबको एक दिन बीमारी के हालत में 87 आदमियों को दी। वो यही अवस्था थी। तब ये कन्विंस होने के बाद ऐसा है कि बीज डाल दिया है, अगर उसको खाद और पानी नहीं मिला अपने आप नष्ट हो जाए, पेड़ नहीं जमेगा, और अगर खाद और पानी मिल गया चाहे उसने खुद दिया चाहे कहीं से, तो एक दिन पेड़ भी होगा, पेड़ आएगा तो उगेगा। तो हम क्यों अपनी तरफ से, ये दूसरी श्रेणी होती है। तीसरी श्रेणी होती है जो गुरु का कहना मानते रहते, उनसे उन्हें अपना काम लेना होता, उनका वो डेफिनेटली उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं और वो भी करते हैं। और अगर बगैर किसी पार्शियलिटी के कोई इजाजत दी गई है तो उसका असर जरूर आता है। चौथी श्रेणी ये होती है जिससे सिलसिले के बुजुर्गों का काम लेना होता है, वो बगैर ऊपर की इजाजत के कोई दे ही नहीं सकता, उसके लिए बाकायदे हुक्म होता है और जो उसे नहीं फॉलो करते उन्हें हिदायत मिलती है कि नहीं ये गलत करते। तो हमें यही खाली देखना है, सिवा सत्संग के दूसरा कोई जरिया नहीं। और इसीलिए लोकल सत्संग पर बड़ा जोर दे रहे हैं कि सब लोग इकट्ठे हों, एक शख्स 200 भंडारे अटेंड कर ले, अगर वो लोकली नहीं आता बिल्कुल अनफिट है फॉर, चाहे वो उसके मन में कुछ भी हो। लोकली टाइम जरूर निकालना चाहिए। एक सत्संगी ऐसी चीज है जिससे मन जो है धीरे धीरे करके मरता जाता है, बचा हुआ कोई जरिया नहीं। तो फिर 100% ही कोई धोखा, 100% ही धोखा नहीं है। पहचान यह है कि आपका विचार गुरु से मिलने है। वो कोई चीज सोचेंगे आपका हूबहू उतर जाए, आप कोई चीज सोचेंगे वो हूबहू उतर जाए। अगर नहीं उतरती तो डेफिनेटली अभी ये नहीं कह सकते कि वो दोनों एक हो। और यही प्रेस थी यहाँ कृष्ण भगवान ने कहा राधा कृष्णा, मतलब ये था दोनों के विचार एक, उनका कोई सेपरेशन का सवाल ही नहीं है। और यही आइडियल होना चाहिए। फिर गुरु शरीर से हो न जो, आप भंडारे पे जाए न जाए, मिले न मिले, आपको कोई फर्क नहीं। और ऐसे लोगों के लिए दूर ही पास का कोई फर्क, लेकिन औरों के लिए नहीं लागू। ये तब लागू है जब आपके उनके एक विचार हो। और एक विचार होने के लिए खाली तभी हो सकते हैं जब बराबर आप उन्हीं को याद करें, किसी दूसरे के बारे में सोचें नहीं। लेकिन 99% लोग सिवा अपने रिश्तेदारों के, सिवा अपने परिवार के, दुनिया के, सबकी नाराजगी का ख्याल रखते हैं, लेकिन ईश्वर गुरु की नाराजगी का कोई कि हर एक नाराज हो जाएगा। तो एक लक्ष्य होना चाहिए, हमारा गुरु हमसे नाराज है, बात बाकी कभी भी कोई वो नहीं। हम लोग बड़े बोल्डली कह सकते हैं कि हमने अपने गुरुदेव बाबूजी को कोई मौका नहीं दिया इससे वो नाराज, क्योंकि यूज नहीं मिले बताया बाबूजी हमारी समझ में इसको ऐसा कर लिया जाए तो बेहतर होगा, उन्हें कर लो, लेकिन ये नहीं उनने मने कर दिया, नहीं ये ठीक नहीं है। तो हमेशा ये फियर रहता था कि हमसे कोई काम ऐसा ना हो जाए जिससे इन्हें दुख हो या ये नाराज हो। हम कौन सा ऐसा काम कर लें जिससे ये खुश हो। मुन्नी के शादी के लिए गए, यही बाराबंकी में एक लड़का था, डॉक्टर था, भाई फादर साहब थे नहीं, भाई थे, बैंक मैनेजर थे, ये इंस्पेक्टर साहब बराबर इन्हीं से कांटेक्ट में थे। तो कुछ जब हम गए, एक बार तो सरकारी गाड़ी से गए, तब नई गाड़ी थी, एक बार तो गए तो पिताजी की गाड़ी थी, स्टाफ कार थी तो वो भी बिल्कुल नई थी, एक बार तो हम लेके गए। उनने सोचा मोटा आसामी है, तो पहले उनने स्कूटर की डिमांड की, हमने फौरन हाँ कर दी। फिर कुछ दिन बीते तो उन्होंने कहा साहब अब डॉक्टर लोग स्कूटर पर कहाँ चलते हैं, गाड़ी दे दीजिएगा। एंड बिलीव मी कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि अपनी नई गाड़ी इन्हें दे देंगे। उनने हाँ कर दी, हम बड़े खुश हुए। बाऊजी महाराज साहब को चिट्ठी लिखी कि सब चीज़ तय हो गई है, और यहाँ तक उनने कहा साहब ये दरवाजे पर ये सिगरेट लेंगे, ये लेंगे, सब हम हाँ करते चले। बाबूजी की चिट्ठी आई कि बेटे तुम्हें दुनिया का तजुर्बा नहीं है, मेरी जानकारी में उस लड़के की शादी वो कहीं और भी कर चुके थे, तुम्हारे पैसे की लालच में उनने हाँ कर दी। हो सकता है कोई ऐसा आदमी उस बीच में मिले जो तुमसे ज्यादा पेमेंट करे, तो वो तुम्हारी सिस्टर की भी शादी को मना करे, इसलिए मेरा बेहतर ख्याल है ये पोस्टपोन करो। मन में बड़ा दुखी भी हुए, और बाद में फैक्ट यही हुआ कि वो एक जगह से वो ले चुके थे। तो देखिए, एक तरफ लड़की की शादी के भी लिए परेशान है, दूसरे ये दुनियावी असूलों का भी ख्याल था कि भाई कोई बाद में ये हुआ। एक साहब ने और कहा, क्योंकि डॉक्टर थे हमारे कैडर के थे, और काफी थोक्का फजीयत हुई। कहने का मतलब ये, खाली ये देख लीजिए किस चीज से आपका गुरु खुश हो सकता है, उसी को करने की कोशिश करिए, मना कर दे मान जाइए, और कोई ऐसा काम मत करिए जो उसके बदला। दो दिल तभी मिल सकते हैं जब दोनों एक हो, उससे पहले मिल ही नहीं सकते, बीच में सब दुनियादारी है। और जब दो दिल मिल गए तो फिर कुछ मेहनत ही नहीं है, फिर कुछ मेहनत नहीं है, बचा हुआ सब ईश्वर और वो अपने आप करता रहता है। फिर खाली हमें ये कर्म करना है, वो डेफिनेटली हर एक को करना, वो हर एक को करना होगा। और लोग उसी को मिसयूज करते हैं कि साहब हमने ये कर दिया, हो गया, उसकी पब्लिसिटी है। लेकिन सही है कि जो अपनी दुनिया को छोड़े बैठा है वो आपको दुनिया में क्यों फंसाए, वो तो कुछ चाहेगा कि किसी तरह उससे आप मुक्ति पाए। कोशिश यही करिए कि किसी तरह कौन सा हम ऐसा काम कर दें जिससे उन्हें खुशी हो, और कोई हमसे ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे उन्हें दुख। सबको छोड़ दीजिए, बता तो रहे, वो तो हमारा भाई था, उसने हमसे पूछा भाई साहब आप नाराज हैं, हमने ना दुनियादारी के उससे कोई नाराजगी नहीं है, इसलिए कि तुमने बाबूजी का कहना नहीं माना, तुम्हारी लड़ाई जो कुछ भी थी भाई साहब से थी या हमसे थी, लेकिन बाबूजी ने ये कहा कि तुम हमारे यहाँ का हर शख्स साल में फतेहगढ़ जाएगा, तुमने बंद कर दिया। तो तुमने बाबूजी का पहले नहीं माना। हमने कहा, उन्होंने ये कहा, हमारे बाद तुम इन दोनों भाइयों को मेरी जगह समझा, तुमने भाई साहब को नहीं माना, तो हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता। बस ये देखिए, आपके गुरु आपसे नाराज ना हो, बात बाकी दुनिया हो जाए। गाड़ी लेके आए, बोले भाई साहब हम आए ना। हमने कहा, डर के मारे आए हो, गाड़ी तुम्हें पाले इसलिए नहीं आए हो। लाला जी महाराज साहब की समाधि पे जा रहा हूँ, अगर उसी का ख्याल हो तो बराबर आते रहते। तुमने नई कार खरीदी है, मन में दहशत है कि फलेगी कि नहीं फलेगी। बस एक चीज देख लीजिए कि जिससे को आप अपना बना लिया, बस वो नाराज हो। कैसे वो खुश हो सकता है उसके बारे में सोचिए, और वही करते चले जाए तो वाकई में आपको कुछ मेहनत नहीं करती। सब रास्ते सब सुविधाएं आपके लिए खुली मिलती चली जाए। अभ्यास इसी के लिए करते हो, सत्संग में ही इससे मजबूती आती।